ஓம் சாந்தி. கர்ம ஔர் யோக் கே சாத், யே தோ ஹமாரா முக்ய சப்ஜெக்ட் ஹை. முஜே பஹலே சபி கோ ஸ்வசிந்தன் கி ஓர் லே சல்னா ஹை. ஹம் சபி விசேஷ்கர் ஜோ சமர்பித் ஹை, பஹுத் படே தியாக் கர்கே ஆயே ஹை. சமர்ப்பித் ஹோனே கே பாத் அப்னி தியாக் கா பதா நஹீ சல்தா, கியோகி ஆனந்த் மே ரஹதே ஹை. சந்நியாஸ் தோ ஹோதா நஹீ, கிஸ் சீஸ் கி கமி தோ ஹோதீ நஹீ. பரந்து சன்சாரிக் இச்சாவோ கா தியாக் கர் தேனா, விஷய விகாரோ கா தியாக் கர் தேனா, சஃபேத் வஸ்த்ர தாரண் கர் லேனா. ये छोटी चीज नहीं आज के संसार में, समझते हैं सब इन्हें, समझे अपने त्याग को. हमारा त्याग हमारा तेज बन जाए, हमारा त्याग हमारी शक्ति बन जाए, हमारा त्याग निष्फल न जाए. ये सुंदर संकल्प हमें करने हैं. सभी बहुत ध्यान देंगे, स्वचिंतन की ओर चलें. मेरे साथ साथ सभी चिंतन करेंगे. समय तेजी से बदल रहा है, हम सब देख रहे हैं. जब आप पुराने हैं, जानते हैं कि बाबा इसी समय की चेतावनी दिया करते थे, अचानक होगा. एवर रेडी रहना है. लंबे काल का पुरुषार्थ ही काम आएगा. उस समय में हम प्रवेश कर चुके हैं ना. जो महान आत्माएं हैं ब्राह्मण कुल में, उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और आएगी. मैं बाबा का एक महावाक्य सुना दूं जो प्राय लोगों को याद नहीं है, क्योंकि वो एक ही बार आया है. और वो ये था, रोज की मुरली में तो हम सुनते हैं कि मैं आया हूं तुम्हें घर ले जाने के लिए, और उसके बारे में अलग अलग अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं, हंसी मजाक भी बाबा करते हैं. नहीं चलोगे तो मार पीट के भी ले जाऊंगा. हंसी मजाक है ये भगवान की. अपने बच्चों से प्यार है, पावन बना कर ले जाऊंगा. लेकिन उस दिन एक और सुंदर लाइन कही, जो सबके लिए तो नहीं है, पर आप सभी जो चिंतनशील हैं उनके लिए है. और वो है, जब तक तुमने अपने ब्राह्मणपन के कर्तव्य पूरे नहीं किए, तुम घर नहीं जा सकोगे. तो कुछ महान आत्माओं का पार्ट ये भी है, चालू हुआ है और चलता रहेगा, कि संसार को बहुत कुछ देकर ही जाएंगे, मदद करते हुए जाएंगे. दिया है तब गायन है भक्ति में. जो महिमा शिव बाबा की है, आप देखेंगे वही देवियों की, वही देवताओं की, वही श्री कृष्ण की, क्योंकि वही महान कार्य किए हैं. तो चिंतन करेंगे, मेरे पास संसार को देने के लिए क्या है. केवल ये सेवा नहीं जिसमें हम लगे हुए हैं, हमारा एक स्पिरिचुअल पहलू भी है, वो दूसरा एस्पेक्ट है जीवन का. सेवाएं तो दुनिया में भी कार्यरत हैं लोग, हम भी कार्य कर रहे हैं. सेवाओं के पीछे हमारी भावना, इंटेंशन क्या है. सेवाएं हमारी उन्नति का साधन है या उन्नति नहीं करने दे रही हैं. सेवा वही सच्ची सेवा है जो आत्मोन्नति करे. याद करें बाबा के महावाक्य, यदि कोई सेवा स्वयं की उन्नति में बाधक है यदि खुशी नहीं रहती तो बाबा ने स्पष्ट बोल दिया था, सेवा छोड़ो, पहले अपनी स्थिति को अच्छा बनाओ। कई लोग सेवाओं में इतने उलझ जाते हैं कि आपसी टकराव ही जीवन का सब कुछ नष्ट कर देता है। ये कला सीखनी होगी कि हम टकराव को कैसे अवॉइड करके चलें। इस माया से युद्ध में मैं आप सभी को एक ही बात कहूंगा, मुरलियों में आती रहती है, संडे की मुरली में और पावरफुल बातें आ रही हैं, अगली में और पावरफुल आएंगी। क्रिकेट का गेम चल रहा है, बॉलर ने बहुत स्पीड से गेंद फेंक दी है, अब जो बैट्समैन है बल्लेबाज वो डर के भागेगा कि मुझे न लग जाए, सब जानते हैं ना, वो सोचेगा फास्ट आई है, इतना तेज मारूं कि छक्का लग जाए, यही तो सोचेगा ना। आप एक प्लान बना लें, इस तरह की बात आती है ज्ञान के इस संकल्प से उन पर विजयी होना है, भागना कहीं नहीं है, ये भी नहीं सोचना है क्यों हो रहा है, वो तो होगा, माया से हमारा युद्ध है, संगठन में भी युद्ध है, हमें उस पर विजय प्राप्त करके मैक्सिमम मार्क्स लेने हैं, भागना नहीं है। तो अपने पास 10-12 ऐसे ज्ञान के हथियार रख लें सभी, जो किसी भी तरह की ऐसी बात को नष्ट करें, उसका इफेक्ट हमारी स्थिति पे ना आ जाए, हम वो सब कुछ न भूल जाएं जिसलिए बाबा के पास आए हैं। चिंतन करेंगे, बाबा जब थे साकार में फिर अव्यक्त हुए तो एक मुरली चली, ये ट्रेनिंग क्लास बना ही था, मैं भी उसकी सफाई धुलाई किया करता था, हम छोटे थे ना तो उसकी सफाई धुलाई, अभी सीमेंट हुआ ही था उसमें पानी भरना, ये सब काम करते थे। तो बाबा ने कहा ये बड़ी छत बाबा ने तुम्हारे लिए बनवाई है, इस पे घूमो, चिंतन करो। चिंतन करेंगे, मैं समर्पित क्यों हुआ हूं, क्यों हुई हूं, सब चिंतन करेंगे। मैं रोज चिंतन करता था उन दिनों, पहला जो मेरा साल था समर्पण का, इस चिंतन में बहुत बीता, मैं यहां क्यों आया हूं। बाबा को देखा तो देखते ही बस एक ही संकल्प हुआ था, यहीं रहना है, इन्हीं के साथ रहना है, लगता था ये संसार हमारे लिए नहीं बना है। क्यों आया हूं मैं बाबा के साथ, मन में पर चिंतन चलता था, तुरंत संकल्प होता था इसलिए आए हो, यदि पर चिंतन ही करना था तो उधर ही अच्छा था, बहुत हैं, खाने पीने आए हो, नहीं, जो भी बात सामने आती थी उत्तर आता था तुरंत, दूसरों को देखने आए हो, नहीं, दूसरों को देखते देखते तो युग बीत गए, अब अपने को देखना है। एक साल अति सुंदर बीता, आपको बता दूं बाबा व्यक्त हुए, यज्ञ में जो वैराग्य था वो दोबारा नहीं आया है कभी, उस वैराग्य ने हमें, मैं कहूंगा मुझे, बहुत लिफ्ट दे दी, डीप साइलेंस रहती थी, छोटा सा यज्ञ था, 35-40 लोग मधुबन वाले थे, थोड़े बहुत आते थे, सो होते थे कभी कभी, बाकी शांति रहती थी 50-60। चिंतन करेंगे, हमने जीवन अर्पित किया है क्यों, जब सब कुछ छोड़ा है तो कुछ करके जाएंगे संसार से, ऐसे नहीं जाएंगे। किसी ने अपने बच्चों को विदेश में भेजा हो, वो 10 साल बाद आया हो और खाली बैग लेकर आ गया हो, कैसे आएगा परिवार में, सिर झुका के, और कोई बहुत सारा माल खजाना लेकर आया हो, बैंक भरे हुए हो, बाप भी कितना प्यार करेगा, उसे भी कितना गर्व होगा, समाज भी उसे कितनी ऊंची दृष्टि से देखेगा, हम भगवान के पास जाए, वो वेलकम करे, आओ ऐसे बच्चे चाहिए मुझे। चिंतन, कैसे बच्चे चाहिए भगवान को हमारे दिल से निकले मेरे जैसे। चिंतन करना सभी, किन्हें प्यार करता है भगवान, साकार मूल्यों में होता है, बताने की जरूरत नहीं है। तो इस जीवन को सफल करना है कर्म योग के लिए थोड़ा सा चिंतन आवश्यक है। आप साकार मूल्यों पे ध्यान देंगे, साकार मूल्य कोई ऐसी चीज नहीं कि बाबा तो रोज रिपीट कर देता है वही, थोड़ा गहराई में चलें। आप एक बात नोट कर लें, रोज बाबा हमें रोज स्मृतियां दिलाता है और धीरे धीरे स्मृति आ रही है, फास्ट गति से आनी चाहिए। मैं आपको एक चीज दिखाऊं, जब एक बार महादेव का सीरियल चल रहा था, मुझे कहा बहुत अच्छा आता किसी ने, अब मैं तो ज्यादा देखता नहीं हूं, मुझको टीवी चलानी भी नहीं आती थी, सच्ची बात तो ये मैंने सीखा भाई कैसे आएगा वो, देखा उस दिन आ रहा था कि पार्वती को राक्षस उठाकर ले गए, दिखाओ महलों में बैठी है थोड़ी उदास, कार्तिकेय और गणेश कह रहे हैं महादेव को हमें आज्ञा दो, मां को छुड़ा के ले आते हैं, सब का वध कराएंगे। महादेव जी कहते हैं नहीं, पार्वती को स्मृति आ रही है। देखो ये शब्द यूज किए उन्होंने, इतने अच्छे यूज थे, मैंने 5-7 सीरियल देखे कि शायद ज्ञान लिया हो इन्होंने, स्मृति आ रही है, पार्वती अपने असली रूप में आ जाएगी और वो खुद ही इन राक्षसों का संहार करके आ जाएगी, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं। मुरली आप सुनो, रोज याद दिला रहा है, बच्चे तुम देवी देवता धर्म के हो, तुम सर्वगुण संपन्न थे, निर्विकारी थे, राज करते थे, भारत ऐसा था। रोज आएगी ये बात, मुश्किल से एक दिन मिस होगी हफ्ते में, रोज तुम ऐसे थे, मैंने तुम्हें ऐसा बना, चले वहां मुरली के समय को योग का समय बना दें, एंजॉय करें, स्मृति स्वरूप हो जाएं। अव्यक्त मुरलियों में तो और गहरा है, तुम कितने शक्तिशाली हो याद दिलाता है, तुम्हारी पवित्रता क्या क्या करती है याद दिलाता है, याद करते चलें। ये बहुत सुंदर योग है, स्मृति स्वरूप होना है। योग की ये डेफिनेशन ले लें, साकार मूल्यों से ले लें, राजयोग अर्थात मेरा कुछ भी नहीं, साकार मूल्य की डेफिनेशन, राजयोग अर्थात स्मृति स्वरूप हो जाना। जब तुम संपूर्ण स्मृति स्वरूप हो जाओगे तो संपूर्ण बन जाओगे। भगवान के महावाक्य, मैंने ऐसी ऐसी गहरी बातें मुरलियों से नोट की, साकार और अव्यक्त से, बहुत मजा आया। लोग मुझे कहा करते हैं स्वमान पर तुम ही बोलते हो और तो कोई बोलता ही नहीं। मैंने कहा क्या करूं, भगवान बोलता है, आपने नहीं सुना क्या कभी, सुनते तो हैं। '74 में सुना था, जब तुम स्वमान में स्थित हो जाओगे तो संपूर्ण बन जाओगे। बोलो इससे बड़ी बात क्या कहेगा वो, याद दिलाया, मुझे शुरू से पकड़ रही स्वमान की, इसका क्या महत्व है। एक दिन बाबा ने कहा, साकार में भी कहा था अव्यक्त में भी कहा, जिस ऊंची नजर से मैं तुम्हें देखता हूं उसी ऊंची नजर से तुम भी अपने को देखो। ये स्वमान है, भगवान हमें थोड़ा ही देखता है, ये अच्छा पुरुषार्थ नहीं करता, ये सोई रहती है, वो देखता है, यही वो हैं जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है, यही मेरे मददगार बच्चे जो भारत को स्वर्ग बनाने में मेरा साथ दे रहे हैं, अब समझो जिन्होंने समर्पित कर दिया उन्हें वो कितना प्यार करता होगा। मैं इस बात पे बहुत सोचता हूं, हमें बाबा कितना प्यार करता होगा। मुझे शुरू से ये समझ में आने लगा था। मैं किचन में आया, एक जमुना दादी होती थी किचन में, बाबा व्यक्त होने के बाद आया कुछ मास बाद, जमुना दादी मामा की ब्राह्मणी, तो वो मुझे कहती, कई बार कहा होगा उसने, अगर बाबा साकार में होते ना तुम्हें बहुत प्यार करते। मुझे नहीं पता था क्यों करते, कभी कभी ऐसा होता है हमें अपनी क्वालिटीज का नहीं पता होता है, उन्हें पता चलता था। तो भगवान हमें प्यार करता है, ये मेरे वो बच्चे हैं जिन्होंने जन्म जन्म भक्ति करते मुझे कहा था जब आप आओगे हम आप पर बलिहार जाएंगे। वो जन्म जन्म की हमारी इच्छा थी वो हम सब ने पूर्ण की है। अब जो बाबा की हमसे इच्छा है वो हमें पूर्ण करना है। तो कर्म करते हुए हम अच्छे स्वमान का अभ्यास करें, बहुत मजा आएगा। आप लोग बिजी रहते हैं, आपका बुद्धि का काम है, कई तरह के अभ्यास आप उस टाइम नहीं कर सकते, लेकिन सवेरे का समय और शाम को भी समय लेना चाहिए एकांत में स्वचिंतन। मैं जो मुरली की बात कह रहा था उसमें एक बात ये बहुत अच्छी है, आपने ध्यान दिया हो कुछ दिन पहले ये बात आई थी, ये ब्रह्मा बाबा अपने अनुभव सुनाते थे कि जब लेट जाओ रात को तो चिंतन करो, मैं आत्मा 5000 साल पहले देव युग में आई थी, कैसे मैंने 5000 साल की यात्रा पूरी की है, अब एंड आ गया है, भगवान आ गया मुझे घर ले जाने, याद दिलाने, सब कुछ देने, अब मुझे चलना है। बाबा ने कहा इसको याद करते करते सोओगे तो साक्षात्कार भी हो जाएंगे स्वप्नों में, मुरली में साकार में था। तो साकार मुरली हमें बहुत अच्छे पुरुषार्थ सिखा रही है। अव्यक्त तो वंडरफुल चीजें हैं, आप जानते हैं, अति गुह्य मुरलियां हैं। इस एक घंटे को मुरली के समय को पावरफुल स्थिति में बिता दें सभी, तो हमारा 4 से 8 का टाइम जितना हम स्वयं को चार्ज कर लेंगे वो हमें कर्म योगी बनने में, जीवन को सर्व खजानों से भरपूर करने में, दाता बनने में बहुत मदद करेगा। देखो बाबा ने हमें एक टाइटल दिया, आज मुझे ज्यादा गहराई से उस पे पकड़ हो रही, मैंने बोला सवेरे योग कराते हैं कमेंट्री से, तुम दाता विधाता वरदाता हो। सोचो विधाता तो भगवान को कहते हैं लोग, उसने हमें कहा तुम भी विधाता हो, कितना बड़ा काम दे दिया, कह के काम दे दिया बहुत बड़ा, तुम्हें सबके भाग्य बनाने, विधाता का अर्थ होता है भाग्य निर्माता, ब्रह्मा विधाता तुम भी भाग्य विधाता हो। तो अपने स्वमान को गहराई से समझते चलें, जिस स्वमान में हम स्थित होंगे उसके वाइब्रेशंस चारों ओर फैलते रहेंगे। करते होंगे ललित भाई सभी, जैसे ही ऑफिस का टाइम शुरू हो, हमने किचन में भी नीचे कराया था, फिर ये लॉकडाउन आदि हो गया, छूट गया कुछ कुछ, कि सभी 15 मिनट पहले आएंगे और गेट के अंदर 15 मिनट खड़े होके 2 गीत बजते थे और सब बहुत अच्छा योग करते थे, जहां बाबा का चित्र है ना ब्रह्मा बाबा का, भोजन खाते, आप लोग भी करते होंगे, ऐसा कर लें कि 2 गीत बजे कार्य से पहले, उसे वाइब्रेशंस बहुत अच्छे होंगे। और कर्म क्षेत्र पर अगर वाइब्रेशंस अच्छे हैं तो गलतियां नहीं होती, 2 घंटे का काम 1 घंटे में हो जाता है। ये सबको याद रखने बाबा ने बहुत सिखाया था शुरू में अव्यक्त बाबा ने, और मैंने इसके बहुत एक्सपेरिमेंट किए, योग युक्त होकर कर्म करते हैं 2 घंटे का काम 1 घंटे में पूर्ण हो जाता है। स्वमान हमारे संकल्पों की स्पीड को स्लो डाउन कर देता है। और मैं सभी को इस चीज पे बहुत ध्यान दिलाना चाहता हूं, ये मेरा कर्तव्य है, समय ऐसा आ गया है, इस संसार में मानसिक रोग तूफानी गति से आगे बढ़ रहे हैं। अगर मैं अपना फोन खोल दूं तो 20 फोन ऐसे ही आएंगे सारे दिन में। मन बहुत तेज चल रहा है, डर लग रहा है, घबराहट होती है, पता नहीं क्या हो गया। अभी भी एक विदेश की बहन का फोन, घबराहट होती है। मैं तो बहुत अच्छी एकदम अच्छे पुरुषार्थ थी 10 साल से ज्ञान में, घबराहट होने लगी है बिना कारण, भयभीत। ये सब डिप्रेशन की ओर बढ़ते हुए कदम है, हमें बचना है। क्योंकि वो समय आ गया है, मैं आपको बाबा का महावाक्य याद दिला दूं, डरने की बात नहीं, लेकिन हमें बहुत केयरफुल रहना है। जब अंतिम समय आएगा तो सभी के विकर्म और विकार एक्टिव हो जाएंगे, एक्टिव होते हैं ब्रेन में, ये वो स्वरूप चालू हो गया है। लोग कहते हैं फ्रेश सोने जा रहे हैं, सोएंगे, बेड पे जाते नींद खत्म, कोई संकल्प नहीं, कोई गलती नहीं हुई, शायद रात बीत रही है ऐसे ही। बहुत अच्छी स्थिति बनानी है अपने को, बहुत इजी करना है अब, और अपने योग की शक्ति को सबको बहुत बढ़ाना है। कर्म योग के लिए मैं आपको एक सिंपल मेथड दूंगा, 7 दिन के लिए 7 पॉइंट रख लें। जैसे बाबा कहते हैं, मैं आत्मा परम धाम से इस तन में अवतरित हुई हूं, 1 पॉइंट। एक दिन में लक्ष्य रख लें, कामकाज करते हुए मुझे इतनी बार इसका अभ्यास करना है, खुद प्लानिंग करेंगे। दूसरे दिन के लिए 2 पॉइंट ले लें, बाबा मेरे सिर के ऊपर छत्र छाया है, मुझे इतनी बार प्रैक्टिस करनी, इसमें शायद समय नहीं लगता, अब 5 सेकंड भी कर लो, 10 सेकंड कर लो, काम रोक के भी कर सकते हैं, नई एनर्जी आ जाएगी। तीसरे दिन के लिए पॉइंट ले लो, मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ, लाइट हाउस हूँ, अंग अंग से लाइट माइट फैल रही है। चौथे दिन ले लो, मुझे आत्मा बनकर परम धाम में बैठना है, 10-10 सेकंड इतनी बार बैठना है, मुझे शिव बाबा के स्वरूप पर बुद्धि स्थिर करनी है, आत्मा के स्वरूप पर बुद्धि स्थिर करनी है, ये ड्रिल करनी है आज सारा दिन में, 10 बार करनी, 20 बार करनी है। कभी स्वमान ले लो, आज मैं सारा दिन अभ्यास करूंगा, मैं एक महान आत्मा हूं, मैं इष्ट देवी हूं, या मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूं, या विजयी रतन हूं। 2 दिन स्वमान ले सकते हैं, डबल भी रख सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे वो ले लें। अव्यक्त मुरलियों में, साकार में बहुत अच्छी प्रैक्टिस आती रहती है। एक बार दृष्टि डाल लें सब पर, सब आत्माएं बैठी हैं हमारे ऑफिस में, सब ये महान आत्माएं हैं, भगवान के द्वारा चुनी हुई, इसको कहते हैं वृत्ति। आपके पूरे हॉल में, आपके पूरे रूम में वाइब्रेशंस बहुत आकर्षक हो जाएंगे, सब एक दूसरे को प्रिय लगेंगे, एक दूसरे को इस दृष्टि से देखो, ये महान है, कितना बड़ा त्याग है इनका, भगवान पे अर्पित हो गए, उसकी सेवाओं में लग गए, अपने लिए कुछ नहीं, सब कुछ दूसरों के लिए। ये सब महान आत्माएं बैठी हैं, इस देव देवियों की सभा है, जो महान थे वो देखो सेवा करने आ गए हैं, भगवान भी सेवा में आ गया तो महान आत्माएं भी सेवा में आ गई हैं। अपनी प्लानिंग स्वयं करेंगे, सभी को ये ध्यान रखना है। श्रेष्ठ पुरुषार्थ, कॉन्स्टेंट पुरुषार्थ, लगातार, कभी ढिलाई ना आए ऐसा पुरुषार्थ, ये उसका ही होता है जो अपने पुरुषार्थ की प्लानिंग खुद करते हैं और प्लानिंग को चेंज करते रहते हैं। ये बात आप अंडरलाइन कर लें, एक ही प्लानिंग सदा नहीं चलेगी, ब्रेन की हमारी स्थितियां अलग अलग हैं, बोर हो जाएंगे कुछ दिन करते करते, हमें चेंज चाहिए, फिर हमारे मन को चेंज चाहिए, तो चेंज करते रहे, छोटे छोटे प्लान बनाते रहे, लंबे चौड़े नहीं कि 20 पॉइंट का चार्ट लिख दिया। देखो मैं यहीं से रियलाइज किया था, बाबा के समय एक दिन मुरली में चार्ट लिखने की बात बहुत आई, मैंने 20 पॉइंट का चार्ट बनाया। यज्ञ में भी 10-12 पॉइंट का चार्ट चलता था, तब मैं बाहर था। अब टाइम वेस्ट तो नहीं किया, रोज ही लिखना पड़े, किया। मुख से कटु वचन तो नहीं बोले, बहुत बार लिखना पड़े, एक बार तो बोल दिया था। आज सवेरे उठे, आज तो नहीं उठे, छोटे थे सोते ज्यादा थे। भोजन पे पूरा योग लगाया, नहीं लगाया पूरा, तो रोज लिखते लिखते छोड़ दिया, बेकार, वेस्ट ऑफ टाइम। मैं धीरे धीरे समझ में आया कि चार्ट कैसे बनाया जाए, और सबसे अच्छा चार्ट बाबा ने मुझे वो डेट भी याद रहती है, 18 जून 1970। मन बुद्धि का टाइम टेबल बनाओ। हमारी डायरियों के पहले पन्ने पे छपा रहता था बड़े आदमियों का, सारे दिन की दिनचर्या का टाइम टेबल फिक्स होता है। अपनी मन बुद्धि का टाइम टेबल बनाओ, तो मैंने बनाया था हर घंटे का। हर घंटे ये अभ्यास करना, ऐसे 16 अभ्यास रख लिए थे। अति आनंद आ गया, वो तो थोड़ा सीरियस पुरुषार्थ है, किसी से होगा किसी से नहीं, लेकिन 1 पॉइंट प्लान सबसे हो सकता है। इसलिए अपना प्रोग्राम खुद बनाएंगे। मैं आपको कुछ स्वमानों की बात बताता हूं और कुछ अच्छे अभ्यास जो सबको आजकल करने हैं। अभी 2-3 दिन पहले वरदान में एक बहुत अच्छी बात आई, फरिश्ते बन कर आकाश में छा जाओ, याद है? अभी आइए, जिनको अंतर्भाग शरीर से यात्रा करने के, विचरण करने के अनुभव होंगे वही सब कर सकेंगे। हमें ये अभ्यास बढ़ाना है, क्योंकि दो जो बड़े धर्म हैं संसार के, तीनों ही एक्चुअली, बौद्ध धर्म भी, मुस्लिम और क्रिश्चियन, भगवान से तो नाता कम है उनका, फरिश्तों में ज्यादा विश्वास है। फरिश्तों के द्वारा जब उन्हें मैसेज मिलेगा तो वो सब स्वीकार कर लेंगे ईश्वरीय ज्ञान को। भले ही भगवान भगवान या खुदा अल्लाह करते हैं, लेकिन हम जानते हैं नाता तो नहीं है। तो अगर हम फरिश्ते स्वरूप का बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे तो ये सेवा बाबा हमारे द्वारा कराता रहेगा। तो मैं आपको एक अभ्यास सजेस्ट कर रहा हूं, पहले यहां हम अभ्यास करेंगे। मैं डबल लाइट फरिश्ता हूं, एक सुंदर सीन आपको स्मृति में दिला दूं बाबा का, जो पुराने हैं उन्होंने सुना है, 10 साल पहले की बात होगी शायद, अभी बाप दादा की मुरली चल रही थी। चलते चलते बाबा ने बोला, आज वतन में एक सीन इमर्ज हुआ, वो सुनाते हैं। तीन फरिश्ते प्रकट हुए, मामा, एक और बताया दीदी का नाम या किसका, दीदी मनमोहिनी, और एक ये गुलजार बेटी। कहा बाबा ने हीरे लिए रंग बिरंगे हाथों में, पाउडर बनाया भगवान के लिए, हीरो का पाउडर बनाना तो ऐसे कर दिया, पाउडर बन गया। वैसे दुनिया में तो कोई फैक्ट्री नहीं है ना हीरो का पाउडर, पाउडर बनाया और तीनों के ऊपर छिड़क दिया, और तीनों से सब रंग बिरंगे हो गए ड्रेस भी, और रंग बिरंगी किरणें फैलने लगी। बहुत सुंदर सीन था, बस बाबा ने बताया और कहा यह अभ्यास किया करो, पहले यहां ये अभ्यास करेंगे। बाबा आ गए, हीरो का पाउडर बना के मेरे ऊपर छिड़क दिया, रंग बिरंगा सब कुछ हो गया, डिवाइन लाइट फैलने लगी। इस अभ्यास को बढ़ाएंगे, फिर अभ्यास करेंगे, मैं फरिश्ता आकाश में हूं विद गोल्डन रेडिएशन, बाबा की पवित्र गोल्डन किरणें पड़ रही हैं और फैलने लगी, पूरा आकाश गोल्डन किरणों से भर गया है, हवा भी मुझे स्पर्श करके पावन होकर बहने लगी है, प्रकृति को जाने लगी ये पवित्र किरणें, प्रकृति हाथ जोड़े खड़ी है, शुक्रिया कर रही है, नीचे के लोग मेरे इस डिवाइन एंजेलिक फॉर्म को देख रहे हैं। थोड़ी देर कर लें, कभी भी कर लें, ऑफिस में भी कर लें, मजा आ जाएगा। सवेरे और शाम यही अभ्यास करके देवकुल की आत्माओं का आह्वान करेंगे, बुलाएंगे उसे अगर आप मुरली पढ़ते हो 77 और 78 में बाबा ने मुरलियां चलाई थी, 2-3-4। रूहों से रूरिहान करो सवेरे सवेरे। फिर किसी ने पूछा बाबा मूल वतन में कि नहीं, आत्माओं से बात करो यहाँ संसार की, तो हम देवकुल की आत्माओं का आह्वान करें, आ जाओ, जिसे तुम ढूंढ रहे थे वो आ गया है, आ जाओ उससे मिलने, जिसे तुम मिलना चाहते थे वो तुम्हें मिलना चाहता है, आओ, वो अपना सब कुछ तुम्हें देने आ गया है, आओ ले लो, अच्छी अच्छी बातें करें, ये ज्ञान देना होगा सूक्ष्म, देवकुल की आत्माओं को आकर्षण होगा। सब टीचर बहने भी अगर सेंटरों में करें सेवा बहुत बढ़ जाएगी, ये रोज किया करेंगे। बाबा का एक महावाक्य, ग्लोब के ऊपर बैठकर बुद्धि परम धाम में बाप के स्वरूप पर स्थिर करके यदि थोड़ी देर भी संसार को सकाश देंगे तो प्रारब्ध पदम गुना बनेगी, बिल्कुल ये एग्जैक्ट वर्ड्स। बैठा करें, मैं ग्लोब के ऊपर विराजमान, पूर्वज या इष्ट देव देवी और बाबा की शक्तियों की किरणें पड़ रही हैं, फैलने लगी हैं, योग में मजा बहुत आएगा, तो हमारा योग दातापन का योग हो जाए। हमें ध्यान देना है जो मन उस बातों में बहुत रहता है, संगठन में बातें तो बहुत हैं, कोई कमी नहीं, शास्त्र लिख दो रोज एक है ना इतना, लेकिन जो मनुष्य बातों में नहीं रहता वही योगी बन सकता है। हम अपने से बात करेंगे, मेरे लिए ये बातें इम्पोर्टेंट या योगी जीवन इम्पोर्टेंट, भगवान को क्या प्रिय होगा। बातों में तो सारा संसार उलझा हुआ है, मुझे नहीं उलझना है। थोड़ा डाउनफॉल हो रहा है लेकिन ये सब बहुत कल्याणकारी होगा, क्योंकि हम एक ऐसे समय से गुजर रहे हैं। मैं बहुत पहले आभास हो गया था मुझे, 2015 से मुझे पता चल गया था, और मैं कहता था जैसे बेगरी पार्ट आया था, भगवान के बच्चे भूखे रह सकते हैं क्या, वो चाहे तो हीरो की बरसात करा दे, लेकिन वो बाबा को करना था ताकि कच्चे निकल जाएं। यज्ञ आगे बढ़ना है, संसार में पहुंचेगी ये अश्व पहुंचेंगे संसार में, स्ट्रांग सेनियां जाने चाहिए, तो कुछ को निकाल लेना था। दूसरा लक्ष्य था, बाबा से सबका बहुत प्यार था, कोई छोड़ के जाना नहीं चाहता था, अब कहा यहां रहोगे तो भूखे रहोगे, जाओ कुछ काम करो, सेवा करो, चलने लगे सभी लोग। मुझे लगता था प्रत्यक्षता से पहले एक पीरियड फिर ऐसा ही आएगा, अब भूखा रहने की तो बात नहीं, अब कुछ और तरह की परीक्षाओं के दौर से गुजर रहे हैं, इसमें हमें फुल मार्क्स लेने हैं, इसको आराम से पास कर लेना है साक्षी भाव से, क्योंकि इसके बाद का सीन अति सुंदर है, जय जयकार का है, और जय जयकार उनके ही द्वारा होगी जो जय जयकार के लायक बने होंगे। बाबा की साकार मुरली में अति गुह्य बातें आती हैं। एक मास पहले आया था, जब तुम संपूर्ण पावन बन जाओगे तो तुमसे साक्षात्कार होने लगेंगे, राज भरी बात, विश्व पर राज वही करेंगे जो संपूर्ण पवित्र बन जाएंगे, ये सब रहस्य हैं, तो हम इनको लेकर आगे बढ़ते चलें। कर्म योगी वही बन सकते हैं जो थोड़ा हल्के रहकर, कर्म से डिटैच रहकर, मैपन से मुक्त रहकर कार्य करेंगे। हमें तो सबको सुख देना है ना, समस्याएं लेकर आपके पास भी बहने आएंगी, गलती करके भी आएंगी, आपको तो उन्हें ठीक करना है, समाधान देना है, उन्हें आगे बढ़ाना है, तो दुआएं मिलती हैं बहुत ज्यादा, और दुआएं संसार में, ब्राह्मण संसार में तो अमृत तुल्य हैं। हम तो साक्षी होकर देखते आए, जिनके साथ दुआएं नहीं थी उनके पैर में कांटा भी चुभ गया है तो घाव हो गया पूरा पैर में, और जिनके साथ दुआएं थी पूरे पैर में भी घाव हो गया तो बहुत जल्दी से ठीक हो गया, पता ही चलने दिया दुआएं। तो अपनी सेवाओं से दुआएं भी लेंगे और ऐसे स्वमान में स्थित होंगे आप, ऐसे वाइब्रेशन फैलाएंगे वहां आते ही सब कुछ ठीक हो जाए, क्योंकि हमारे बहुत सारे स्थान ऐसे बनने ही वाले हैं। मूल्यों में ही आती है बात, तुम्हारा हर सेवा केंद्र तीर्थ बन जाएगा। चलो हर एक नवी बने लेकिन बहुत सारे बड़े सेवा केंद्र तीर्थ बन जाएंगे। कुछ जगह ऐसी होंगी जहां आते ही लोगों का चित्त शांत हो जाएगा। रामायण पढ़ते थे तो एक सीन आता था, तब उसका पता नहीं चलता था, हम छोटे थे, कि कुछ लोग जा रहे थे कहीं ऋषि का आश्रम था, वहां से गुजरते ही उनका चित्त शांत हो गया और रुक गए, क्या है यहां। वो थोड़े खराब लोग थे, चित्त शांत हो गया, पता किया कि ऋषि रहता है यहां कोई, उसका आश्रम है ये। ये सीन हमारे पास बहुत होने वाले हैं, कोई स्थान हीलिंग एनर्जी से भरपूर हो जाएगा, आते ही लोग निरोग हो जाया करेंगे। कोई ऐसा स्थान हो जाएगा जहां मानसिक रोगी बैठेंगे और खुशी लेकर उठेंगे, कोई स्थान ऐसे हो जाएंगे जहां आते ही लोगों के चित्त शांत हो जाएंगे, तनाव दूर हो जाएंगे। ये सब कार्य दीवारों से नहीं होगा, हम सबसे होगा। इसलिए ये स्वमान हमें हमारी महान जिम्मेदारियों की याद दिलाते हैं। धन तो इतना आएगा, आप सब बहुत बिजी हो जाएंगे, बाबा ने बोल दिया है, जिन देवियों के मंदिरों में इतना चढ़ावा चढ़ता है, जब वो प्रत्यक्ष होंगी तो सोच लो क्या होगा। मैंने अपने कानों से इसी हॉल में बाबा की महावाक्य सुने हैं, सारे संसार की धन संपदा तुम्हारे चरणों में आ जाएगी। लेकिन हम करेंगे क्या उसको, सोने से भर दिया जाए यह हॉल, हम क्या करेंगे, उसकी रोटियां तो नहीं बन सकती। हमारे पास तो ईश्वरीय खजाना है, हमारे जीवन की तो शोभा त्याग तपस्या और वैराग्य है, प्योरिटी हमारा श्रृंगार है। इसलिए आप सबने बहुत अच्छा किया, मेरा यह संकल्प रहता था कि शांतिवन के बड़े बड़े डिपार्टमेंट यहाँ आकर भट्टी करें, अलग भी हो जाते हैं और बहुत अच्छा लगता है, यहाँ के वाइब्रेशंस तो बहुत सुंदर हैं ही। कभी रशिया के लोग आए थे चुपचाप, कुछ वैज्ञानिक मशीन लेकर आए थे, आबू रोड आते ही उनका कांटा तेज चलने लगा, ऊपर चढ़ने लगे और आगे बढ़ गया, पांडव भवन के पास आ गए, बिल्कुल लास्ट में पहुंच गया, बाबा के कमरे के पास आए, कांटा जोर से टक्कर मार के टूट गया। उन्होंने बताया था कि झोंपड़ी से शांति स्तंभ तक की जो रोड है ना, ये समझ लो 15-20 फुट की, इस पर संसार के सबसे अधिक पावरफुल वाइब्रेशंस हैं। और हम समझते हैं क्यों, ब्रह्मा जी रोज घूमे हैं यहाँ, उनके चरण दृष्टि, उनकी महान तपस्या, उसके वाइब्रेशंस यहाँ बहुत ज्यादा है, लेकिन उस स्थान पे बहुत ज्यादा है। तो आप सभी ने बहुत सुंदर काम किया, मैं तो कहूंगा आते रहना। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। प्रभु का ध्यान कीजिए।
बड़ी से।